खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरुवल वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है।
खूब शांति सुप्रीम सर्जन की अति लाडली डॉक्टर सविता दीदी हम सब के बीच में उपस्थित हैं। हम उनकी एक हाथ की ताली से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आदरणीय डॉक्टर सविता बहन को हम सब मधुबन में आने वाले पहचानते हैं, जानते हैं। डॉक्टर सविता बहन विगत 40 वर्षों से प्यारे बाबा की शिक्षाओं को, आज्ञाओं को अपने जीवन में धारण कर रही हैं। 26 वर्षों से आप बेहद घर मधुबन में ही विश्व सेवा पर उपस्थित हैं। आप वो महान हस्ती हैं जिन्हें आदरणीय डॉक्टर दादी प्रकाश मणि जी के सानिध्य में रहने का, अंग संग रहने का, चिकित्सा के क्षेत्र से उनके स्वास्थ्य की देखरेख करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के वुमेन विंग की हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। आपके अंदर विभिन्न प्रतिभाएं बाबा ने विशेषता के रूप में भरी हुई हैं। आप सॉफ्ट और सारगर्भित वक्ता के रूप में राजयोग प्रशिक्षण मधुबन बेहद घर में रहकर और भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों पर जाकर कराती हैं। आपने भारत के बाहर भी अपनी इस आध्यात्मिक ऊर्जा को विश्व के कई देशों में प्रवाहित किया है। ऐसी कुशल प्रवक्ता हम सब अपने बीच में पाकर गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं और आपसे विनम्र निवेदन है कि हम कार्यक्षेत्र में रहते हुए कई परिस्थिति और विघ्न जो पुरुषार्थ में हमारे सन्मुख आ जाते हैं उनको सहज ही समाप्त करने की विधि हमें प्रदान करेंगी डॉक्टर सविता दीदी मधुबन।
ओम शांति। अभी हम बहुत अच्छा गीत सुन रहे थे। क्या सुन रहे थे? ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, लेकिन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो मैं समझती हूँ कि सभी विघ्नों का विनाश करने वाली ये हमारी जादुई छड़ी है। खैर, लेकिन हम सभी व्यवहारिक जीवन में रहते हैं और जब बाबा के ज्ञान में आते हैं तो जिस दिन से धारणा का लेसन होता है उस दिन से ही विघ्न शुरू हो जाते हैं, सभी को अनुभव है। और ये पेपर सबको देने पड़ते हैं क्योंकि बाबा भी हमें ऐसे ही अपना बच्चा नहीं बनाता है, वो भी टेस्ट ले लेता है पहले कि ये डायमंड बनने लायक है या नहीं है, क्योंकि उसे तो डायमंड चाहिए। साधारण व्यापार तो बाबा भी नहीं करता है, लेकिन बाबा की पहचान, बाबा के निश्चय, हमारी हिम्मत, लगन, बाबा से प्यार, ये सारी बातें हमें कुछ भी नहीं लगती हैं। उस समय इतना नशा होता है, जैसे सबसे पहला खान पान का शुरू होता है। परिवार में रहते हैं तो आप सब तो पार कर चुके हैं, है ना, कर चुके हैं ना सभी, कि थोड़ा थोड़ा निभाने के लिए खा लेते हैं इधर उधर। कहते हैं क्या करें, समाज में रहते हैं, अगर हम नहीं खाएंगे तो फिर वो भी नहीं खाएंगे। तो बाबा कहता है जिनको जन्म जन्मांतर निभाया, उनको अभी भी निभाते रहेंगे तो क्या होगा। जो अविनाशी प्राप्ति कराने वाला बाप है वो सिर्फ एक जन्म में भी कितना समय के लिए मिला है हमें, पूरा जन्म तो वो भी नहीं, अगर उसको नहीं निभाया तो क्या साथ में ले जाएंगे। तो अभी किसको निभाने का समय है, अभी बाबा को निभाने का समय है। लौकिक वालों को, संसार वालों को, समाज वालों को तो निभाते आ रहे हैं जन्मों से, और वो कभी खुश रहने वाले भी नहीं है। आज आपने खुश कर दिया, कल दूसरी बात से नाराज हो जाएंगे, होता है नहीं होता है, खुश रहेंगे वो आज आपने उनको खुश कर दिया तो। फिर दूसरी बात आती है ब्रह्मचर्य को लेकर के, ये भी बाबा ने फाउंडेशन दिया है ब्राह्मण जीवन का, और इसमें हम पक्के होते हैं, और इसमें तो आदि काल से यज्ञ में विघ्न आए हैं। जब से ही ब्रह्मा बाबा ने इस धारणा पर बहुत महत्व दिया तब से पूरा समाज उस समय, चाहे कितना भी लोगों ने कहा बाबा आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, आप सिर्फ एक बात हटा दो इसमें से, अभी भी लोग यही कहते हैं, सिर्फ एक बात हटा दो, भाई बहन बनाते हैं वो हटा दो फिर सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन बाबा ने क्या कहा, धरत परिये धर्म ना छोड़ी, अभी किसी ने बोला, लेकिन बाबा ने कहा कि ये मेरी श्रीमत नहीं है, ये उसके श्रीमत है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो भगवान कह रहा है, और उसे सत्यों की पवित्र दुनिया की स्थापना करनी है, तो वो पवित्रता के आधार पर ही होने वाली है। जितने भी धर्म स्थापन हुए सभी धर्म स्थापकों ने भी धर्म स्थापन के समय ब्रह्मचर्य का पालन किया, यहाँ तक कि महात्मा गांधी को आजादी दिलानी थी भारत को तो भी उन्होंने वो व्रत लिया, क्योंकि आत्मा की चढ़ती कला है तो उसके लिए जो शक्ति चाहिए आत्मा को वो इस आधार पर ही मिलनी है। तो हम सब भी इस पेपर को भी पास करते हैं, अगर दोनों युगल ज्ञान में नहीं चलते हैं तो बंधन हो जाता है। और बाबा कहता है ये बंधन आपको विघ्न नष्ट मोहा बनाते हैं, मदद मिलती है नष्ट मोहा बनने में। जिस पति में बहुत मोह होता है, बहुत पति या पत्नी जो भी कहने में आता है, क्योंकि भाइयों की तरफ से विघ्न ज्यादा आता है ऐसे सुनते हैं। मैं अभी भी मेरे कई लोगों को जानती हूँ जो इस कारण मार खाते हैं, तो ये बहुत बड़ा पेपर होता है और उसमें कई बार जीवन का प्रश्न भी हो जाता है ना, घर तक छोड़ देना पड़ता है अगर बाबा से प्यार है और पूर्ण निश्चय है। लेकिन लगन है तो बाबा कोई ना कोई रास्ता निकाल देता है। मैं एक माता को जानती हूँ जिसने कई सालों पहले मुझे इस बारे में बात की थी, ऐसे तो बहुत सारे आते रहते हैं, हम सब उससे गुजरते हैं, लेकिन मतलब इतना वंडरफुल वो केस था और कितने विघ्न उनके जीवन में, लेकिन कैसे बाबा निकालता है जब हमारा निश्चय उस पर पूरा होता है। इसीलिए बाबा कहता है निश्चय बुद्धि विजयंती, है ना। तो कभी भी उस परिस्थिति में, क्योंकि विघ्न में संशय आने के भी मार्जिन होती है, सबसे ज्यादा हमारे फाउंडेशन के, निश्चय के फाउंडेशन को हिलाने वाले विघ्न ही होते हैं। तो वो माता ने मुझे ऐसी स्टोरी सुनाई अपनी, जब वो मेरे को मधुबन में मिली, कहा कि मैं ज्ञान में चली तो पति ज्ञान में नहीं चले, और नहीं चले तो पवित्रता की धारणा का विघ्न था और मुझे घर छोड़ना पड़ा। और तीन बच्चों को भी पति ने मेरे साथ ही बेच दिया कि ठीक है तुम ही अपने कमाओ और बच्चों को भी खिलाओ और इनको जो भी जैसा भी बनाना है बनाओ, मेरी तरफ से छुट्टी है आपको। तो वो सिलाई जानती थी, उसने सिलाई करना शुरू किया। बच्चा, बड़ा बच्चा जो था वो थोड़ा बड़ा था, समझदार था, यानी 17-18 साल की उम्र का था वो, और बाकी दूसरे दो बच्चे छोटे थे। तो वो बच्चे ने सोचा कि माँ को मदद करूं, तो कुछ काम ढूंढा उसने, तो एक बिजनेसमैन के साथ उसको थोड़ा काम मिल गया और वो कमाने लगा बच्चा। और उसने मोटरसाइकिल खरीदी, कुछ समय हो गया उनको अपने पति से अलग हुए, तो उस बच्चे ने मोटरसाइकिल खरीदी क्योंकि काम पर आना जाना पड़ता था। और जब जाने आने लगा तो फिर ऐसे ही होते हैं, यूथ होते हैं, कई बार जब गाड़ी हाथ में आती है तो बहुत जोश होता है, पता ही नहीं चलता किस स्पीड से चला रहे हैं। और उसने थोड़े ही दिनों में एक्सीडेंट कर दिया। अब एक्सीडेंट किया तो उसको चोट लग गई, हॉस्पिटल में एडमिट किया, सीरियस रहा। डॉक्टरों ने कहा कि अभी हम कुछ कह नहीं सकते ना, कुछ भी हो सकता है। और कुछ दिनों में उसने शरीर छोड़ दिया। अब ये दूसरी बात, हाँ, घर छूट गया एक बात, फिर ये दूसरी बात, कितना बड़ा धक्का जीवन में। तो संशय हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन उसने धीरज रखा और उसने कहा कोई बात नहीं, मेरा कोई कर्म का हिसाब किताब होगा। वो चुप्त हो रहा है। फिर थोड़े समय के बाद, तो फिर थोड़े दिनों के बाद उनकी बेटी थी, दूसरा नंबर उनकी बेटी थी, वो घर में काम कर रही थी, सफाई कर रही थी और पंखा साफ कर रही थी, वो स्टूल पे चढ़ी हुई थी। पता नहीं कैसे उसका इम्बैलेंस हुआ और वो गिर गई। अब गिरी तो उसको सिर में चोट लगी और वो लड़की ने भी शरीर छोड़ दिया। अब बताइए क्या करेंगे ऐसे समय पर। ये रियल कहानी है। अब वो माता इतनी दुखी, और जो उसका तीसरा बच्चा था ना, वो तीसरे बच्चे ने डर के मारे घर छोड़ दिया। आप समझ गए क्यों छोड़ दिया? हंस रहे हैं, मतलब मेरा नंबर तो नहीं। एनीवे, मतलब वो घर छोड़ के गया अपने पिताजी के पास। फिर उसके बाद अब माता ने सोचा, अब मेरे पास कोई भी नहीं है, अब मैं क्या करूं। तो उसने सोचा क्यों ना मैं मधुबन सेवा में चले जाऊं, मेरा मन अच्छा नहीं है, बहुत मन दुखी है, तो मधुबन सेवा में जाऊंगी तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। तो वो यहाँ सेवा में आ गई मधुबन में। एक तरह से निर्बंधन ही हो गई थी वो, उस हिसाब से तो बच्चे तो कोई थे नहीं अभी। तो उस दौरान वो मुझे मिली और उसने रोते रोते ये सारी कहानी अपनी मुझे सुनाई। और उसने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं अभी, मेरे जीवन का क्या क्या वो है। फिर मैंने उसको समझाया कि देखो, हमें उस समय बाबा जो टच करता है हम वो समझाते हैं। तो मैंने उसको ये समझाया कि देखो, ड्रामानुसार आप निर्बंधन हुई हो, आप यहीं रहो सेवा में, जो भी अपने सेवा में लेने वाले भाई हैं उनको आप अपनी स्थिति बताओ और उनको बोलो मैं 6 मास तक यहीं सेवा में रहती हूँ, बहुत जरूरी आपको जाना है तो आप जाओ अपने घर, और नहीं तो यहाँ ही सेवा करो, आपको जरूरत तो है नहीं अभी अपने लिए, क्या कमाई करनी है आपको, और बाबा के घर में रहोगे तो खाना पीना रहना तो बाबा देता ही है। तो उसको ये बात थोड़ी जची, उसने कहा कि ठीक है, मैं अभी तो 2 महीने के लिए आई थी लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगी और थोड़ा लंबा समय यहाँ रहूंगी। तो वो रही यहाँ और पहले शुरू में उसने भंडारे में सेवा किया और बाद में पता चला इसको सिलाई आती है तो उसको सिलाई डिपार्टमेंट में सेवा मिल गई। और 6 महीने के बाद वो एक बार अपने घर गई और मधुबन में रहते रहते उसकी स्थिति इतनी अच्छी हो गई कि वो बिल्कुल भूल ही गई कि उसके जीवन में क्या हुआ है। ज्ञान योग की पालना तो मधुबन में सदा ही चलती रहती है, आपको पता ही है। तो सब उन बातों से मन बाहर आ गया, अच्छी स्थिति में थी और एक बार सारा हिसाब पूरा करके आ जाए, ऐसा करके वो घर गई और फिर वापस यहाँ आ गई। और मैंने उसको बोला आप निर्भय भाई से मिल लेना, वो जरूर आपके लिए कुछ ना कुछ निश्चित कर देंगे। जब आपकी कहानी वो सुनेंगे तो निश्चित है हम बाबा के बच्चे तो सब रहमदिल होते हैं और सहयोगी होते हैं, और सचमुच ऐसा किया कि वो बहन आज मधुबन में ही परमानेंट सेवा करती है। तो देखिए, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं मधुबन निवासी बन जाऊंगी, हाँ? लेकिन उन विघ्नों को इतना बाबा में निश्चय से, भले दुखी हुई, स्थिति ऊपर नीचे हुई, क्योंकि ज्ञान में वो बहुत पुरानी नहीं थी, लेकिन निश्चय नहीं छोड़ा, यानी बाबा का हाथ नहीं छोड़ा, तो बाबा ने उसके लिए रास्ता बना दिया और ऊंच भाग्य बना दिया, है ना, तूफान तोहफा बन गया, ऐसे ही कहेंगे, क्या कहेंगे। तो हमारी जिंदगी में भी कोई ऐसे तूफान तो नहीं आते हैं, तो बहुत बुरी स्थिति है, इतने तूफान नहीं आते हैं ब्राह्मणों के आगे, छोटे मोटे ही टेस्ट पेपर होते हैं, हम ज्ञान में चलने लगते हैं, अपने लक्ष्य की विस्मृति में आ जाते हैं थोड़ा, जिस लक्ष्य को लेकर के आए थे, कई बार वो मंजिल की बजाय साइट सीन में जाने लग जाते हैं, कहते हैं ना, आए थे हरि भजन को और पूरा करेंगे आप, हाँ, आए थे हरि भजन को, क्या करने लग गए, ओछन लगे कपास, ये वाली स्थिति हो जाती है हमारी कई बार। तो एक कहानी मुझे याद आ रही, वो भी हंसी की कहानी है, कि कैसे हम भूलते हैं, जब हम ज्ञान की विस्मृति में आते हैं तो छोटी छोटी बातें ही हमारे लिए समस्याएं बनने लग जाती हैं। तो एक गांव का व्यक्ति था और वो अपनी ससुराल गया और वहां ससुराल में उनको खिचड़ी खिलाई, हो सकता है आप में से किसी ने सुनी भी होगी वो कहानी। तो खिचड़ी उसके लिए बहुत नई चीज थी, उसने कभी खाई नहीं थी और बहुत अच्छी स्वादिष्ट खिचड़ी बनी हुई थी, और जब खिचड़ी खाई तो उसे बहुत अच्छा लगा और उसने सोचा मैं अपने घर जाकर बताऊंगा कि आपके घर में खिचड़ी खिलाई है, पर वो भुलक्कड़ था, मतलब भूल जाता था, तो उसने सोचा मुझे याद रखने के लिए इसको बार बार अपने मन में दोहराना पड़ेगा कि मैंने खिचड़ी खाई है, ऐसे करके। तो जैसे ही वो घर से बाहर निकला तो याद करने लगा, पर भी वो एक शब्द गड़बड़ कर गया, खिचड़ी की बजाय खाचड़ी बोलने लगा, वो खाचड़ी खाचड़ी खाचड़ी। तो जब जा रहा था रास्ते से तो खेत पड़ता था रास्ते में, और खेत में किसान जो है वो चिड़िया उड़ाने के लिए वो लगा रहा था, वो नहीं लगाते हैं चिड़िया उड़ाने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, तो उसने कहा मैं तो चिड़िया भगाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये बोल रहा है खाचड़ी खाचड़ी, क्या हुआ है इसको। तो उसने बुला के उसको बोला, क्या बोल रहे हो तुम, क्यों चिड़िया खाए। तो उसने कहा अच्छा मैं क्या बोलूं, मैं तो भूल गया हूँ मैंने क्या खाया था। तो उसने कहा बोलो उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। तो उसने उड़ चिड़ी बोलना शुरू कर दिया। अब गया आगे तो वहां एक शिकारी चिड़िया का शिकार करने के लिए निशाना लगा रहा था और ये उड़ चिड़ी बोल रहा है, तो उसको गुस्सा आ गया, उसने कहा चिड़िया को तुम क्यों उड़ा। तो उसने उसको बोला अच्छा मैं क्या बोलूं, उड़ चिड़ी नहीं बोलूं तो क्या बोलूं। उसने कहा ऐसे बोलो आते जाओ फंसते जाओ। ठीक है, भूल गया था वो, तो गया आते जाओ फंसते जाओ आते जाओ फंसते जाओ। अब वहां पर एक पेड़ के नीचे कुछ चोर, जो मेरे को हंसी आ रही, वो चोर थे अपना सामान इकट्ठा करके और बांटने की कोशिश कर रहे थे। अब जैसे ही उन्होंने सुना ये बोल रहा है आते जाओ फंसते जाओ, उसने कहा क्या बात है, हमको फंसाना चाहता है, ऐसा बोल रहा है, हम तो सचमुच फंस जाएंगे, इसको पता है। तो उन्होंने पिटाई लगा दी उसकी जोर से, क्योंकि चोर थे वो। तो उसने बोला अच्छा मैं क्या बोलूं, क्योंकि अब तक उसको यही अनुभव था कि मैं गलत बोल रहा था तो लोगों ने मुझे सुधारा, क्या बोलना है। तो उसने कहा अच्छा आप बताओ क्या बोलूं, मैं मार क्यों रहे हो मुझे। तो उसने कहा ऐसे बोलो ऐसा दिन कभी ना आए। ठीक है भाई, ऐसे ही बोलता हूँ, ऐसा दिन कभी ना आए। आगे गया, एक बारात जा रही थी अब आप समझ गए, हाँ, पिटाई लगी उसकी। फिर उसने बोला अच्छा बोलो क्या बोलूं। तो उसने कहा कि बोलो ऐसा दिन बार बार आए। फिर वही हुआ, आप समझ गए, हाँ, कोई मरा हुआ अर्थी लेकर के जा रहे थे और जब सुना ऐसा दिन बार बार फिर पिटाई हो गई। बड़ी मुश्किल से वो घर पहुंचा और अपनी पत्नी को बोला, पता नहीं तेरे घर में क्या खिलाया मुझे, आज तो मुझे तो क्या कारण बना? सिर्फ एक विस्मृति, एक छोटी सी भूल, हाँ उसके लिए कितना विघन रूप बन गई, ऐसे ही कहेंगे। तो हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। हाँ, बाबा कहता है कि हम निरंतर स्मृति में रहें या निरंतर बाबा की याद में रहें तो विघ्न क्या हो जाएंगे? हाँ, विघ्न ऐसे होंगे जैसे मक्खन से बाल, क्योंकि बाबा स्वयं विघ्न विनाशक है हमारा। लेकिन ऐसे समय पर हम उसको ही भूल जाते हैं, फिर धीरे धीरे आगे चलते हैं तो जो हमारे अपने संस्कार हैं ज्ञान में, हम सब 63 जन्मों से अपने संस्कार तो लाए हैं ना, तो बाबा ने ऐसे कहा है कि हमारे ओरिजिनल संस्कार जो ईश्वरीय संस्कार हैं वो मेरे संस्कार हैं, जो माया के संस्कार हैं वो अब मेरे नहीं हैं, वो तो रावण के संस्कार हैं। लेकिन फिर भी माया को हमने चैलेंज किया है तो वो इतना आसानी से तो हमको छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि हम युद्ध के मैदान में। बाबा ने ये भी कहा कि हम सभी अननोन बट वेरी वेल नोन वॉरियर्स हैं। कौन सा युद्ध है हमारा? अपना अपने आप से युद्ध है, दूसरों के साथ हमारा युद्ध नहीं है। हमारी अपनी ही कमियां हमारे विघ्न रूप बनने लगते हैं। अब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तो मोटी मोटी बातें हैं। बाबा कहते हैं इसके अंश वंश भी, वो संस्कार इमर्ज होते रहते हैं बीच बीच में। हम सोचते हैं हमने तो विदाई दे दी पुराने संस्कारों को, फिर पता नहीं कहां से कौन सा संस्कार इमर्ज हो जाता है। तो उसके लिए बाबा ने हमें कहा है रोज हमें ज्ञान के अस्त्र शस्त्र का अभ्यास करते रहना है। ज्ञान ही हमारे अस्त्र शस्त्र हैं जो हमें माया पर विजय दिलाते हैं। और यदि प्रतिदिन हम मुरली सुनते हैं, हमारे अस्त्र शस्त्र कहां से मिलते हैं हमको? मुरली से मिलते हैं। तो मुरली भी सुनते हैं और बहुत एकाग्रता से सुनते हैं, और ना सिर्फ सुनते हैं लेकिन फिर उसको मनन चिंतन भी करते हैं, यानी उस ज्ञान को अपना बनाया। एक होता है सुनना और खुश होना। सुनना तो अच्छा लगता है क्योंकि सत्संग की आदत है हमें, द्वापर युग से हम सत्संग करते आए हैं, तो कनरस बाबा कहता है ना, तो वहां तक नहीं, ज्ञान कहां तक होना चाहिए? सुनना, समाना और स्वरूप बनना। और वो तब होता है जब हम उसको अटेंशन देकर बार बार स्मृति में लाते हैं। अगर नहीं लाया वो काम नहीं करेगा। जैसे जो योद्धा होते हैं ना, मानो आज मिलिट्री में हैं, पुराने जमाने में राजाओं के समय योद्धा होते थे, आज के जमाने में तो मिलिट्री सेना होती है, तो वो सेना को भी रोज शस्त्रों का अभ्यास कराया जाता है। और अगर नहीं कराएंगे तो वो समय पर निशाना चूक जाएंगे। सही निशाना लगाने के लिए रोज का अभ्यास चाहिए। या वो अपने शस्त्रों की धार को तेज रखते हैं, हर दिन उसको चेक करते रहते हैं कि कहीं उसमें जंग तो नहीं लग गया। अगर धार भी ठीक नहीं होगी तो भी वो समय पर सही वार नहीं कर पाएंगे, और दुश्मन आ गया तो फिर विजय नहीं पा सकते। तो यहाँ भी मानव काम विकार के लिए बाबा ने हमें कहा है अशरीरी स्थिति का अभ्यास, आत्मिक स्थिति का अभ्यास, निराकारी स्थिति का अभ्यास। मुझे देह देखना ही नहीं है, मुझे क्या देखना है? आत्मिक दृष्टि से ही देखना है। और मानव संस्कार वश वो बाहर आता है तो तुरंत मुझे यूज करना है कि मैं आदि अनादि शुद्ध स्वरूप आत्मा हूं, मेरा ओरिजिनल स्वरूप पवित्र है, ऐसे ही कहेंगे। लेकिन अगर मैंने इस बात को अपने स्वरूप में नहीं लाया तो समय पर ये पॉइंट काम नहीं करेगी। हम सोच भी रहे हैं मैं आत्मा हूं लेकिन फिर भी मेरे संस्कार का वार मुझ पर हो रहा है और माया विजय पा ली। लेकिन अगर मेरा आत्मिक स्वरूप का अभ्यास पक्का है तो फिर कैसे भी वातावरण में मैं रहती हूं। कई बार लोग कहते हैं ना, क्या करें आजकल का वातावरण ही कलयुगी है ना, सब जगह, हाँ कहां पर ऐसा नहीं है जहां इस तरह का प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़ता हो। लेकिन हम कौन हैं? हमें बाबा ने विश्व परिवर्तक कहा है ना, हम वातावरण को, वाइब्रेशन को चेंज करने वाले हैं। बाबा कहता है आपकी वृत्ति दूसरी आत्माओं की वृत्ति को चेंज करे, या उनकी वृत्ति आपकी वृत्ति को चेंज कर दे, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हमारी वृत्ति दूसरी, अगर कोई अपवित्र वृत्ति से भी मेरे सामने आता है तो भी मेरी वृत्ति उस आत्मा की वृत्ति को परिवर्तन करने की शक्ति रखती है, ऐसा हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। तभी हम अंत समय में जब ऐसे वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा होंगे वातावरण में, तब हम उसे परिवर्तन कर सकेंगे। हमें प्रकृति को भी परिवर्तन करना है, बाबा ने कहा, तो मुझे ये चेक करना है, तभी हम विजयी हो सकेंगे कि हर दिन क्या मेरा ये अभ्यास है, आत्मिक स्थिति का अभ्यास इतना पक्का है, या सिर्फ योग में बैठे तो आत्मा याद आई, बाकी टाइम देह अभिमान में ही रहते हैं, हाँ, या कर्म कॉन्शियस रहते हैं। चलो देह अभिमान में नहीं रहते तो कर्म कॉन्शियस रहते हैं, लेकिन सोल कॉन्शियस नहीं रह पाते हैं। ब्रह्मा बाबा ने कितना अभ्यास किया, हम सुनते हैं ना, तो इतना अभ्यास चलो हमने ना भी किया हो, लेकिन कम से कम हमारी आत्मिक स्थिति ऐसी तो हो कि जब माया वार करे तो कम से कम मेरी आत्मिक स्थिति से मैं विजय पालूं, इतना तो करना ही है कि नहीं करना है। फिर दूसरा क्रोध आ जाता है, मानो तो हम ब्राह्मण वैसे तो क्रोध नहीं करते हैं। बाबा ने अभी पिछले 2-3 संडे पहले की मुरली थी, उसमें कहा कि आप विकार का रूप परिवर्तन कर दो, याद होगा आपको, हाँ, जिस रूप में माया वार करने आए, हाँ, वो आप पर वारी चली जाए, यानी वो सेवाधारी बन जाए, और किस रूप में सेवाधारी बने, वो 5 बातें बाबा ने बहुत अच्छी तरह समझाई थी। जैसे हम शास्त्रों में यादगार देखते हैं, श्री कृष्ण ने सांप के ऊपर भी डांस कर लिया, हाँ, विषैला, कितना विषैला सांप था वो यमुना नदी में, तो कोई सचमुच कृष्ण ने डांस नहीं किया, लेकिन वो यादगार है इस समय के। हाँ, विष किसको कहता है बाबा? विकारों को ही बाबा विष कहता है। या विष्णु को शेष शैया पर सोया हुआ दिखाते हैं, तो शेष शैया में 5 सांप जो हैं वो उसकी छत्र छाया है, तो वो छत्र छाया है यानी सांप ही सेवाधारी हो गए, ऐसे ही कहेंगे ना, वो 5 विकारों का प्रतीक है। तो वो हमारी यादगार है कि हमने अपनी विजयी स्थिति में माया को भी सेवाधारी बना लिया। तो बाबा ने कहा कि काम विकार को आप शुभ भावना शुभ कामना में परिवर्तन कर दो, कामना ही नहीं रहेगी, कामना जो है वो उसका रूप लेती है, तो कामना ही नहीं रहेगी तो काम विकार अपने आप समाप्त हो जाएगा। फिर दूसरा क्रोध को बाबा ने कहा था योग अग्नि में बदल दो, क्रोध अग्नि को योग अग्नि में बदल दो। मानो किसी के ऊपर आपको गुस्सा आ रहा है, उसके ऊपर नहीं निकालना है, बाबा से योग लगाना शुरू कर दो, तो बाबा शांति का सागर है, हमारे क्रोध को शीतल बनाएगा, नहीं बनाएगा, वो शीतलता की शक्ति हमें भी शांति दे देगी, या हमें वो अपने शांत स्वरूप की स्थिति में स्थित कर देगी, तो उस समय वो काम करे। तो क्रोध के भी अंश वंश के रूप में भी वो विघ्न रूप तो नहीं बनता है। एक तो होता है हम गुस्सा करते हैं, इसने ऐसा किया ना कोई परिस्थिति तो बनेगी, पेपर आएगा तो बाबा तो पेपर तो लेगा ना, कि हम क्लास में आगे बढ़ रहे हैं, रोज ज्ञान सुनते हैं, और हम कहें नहीं ऐसी कोई बात ही मेरे सामने नहीं आनी चाहिए जो गुस्सा दिलाने वाली हो, तो फिर पेपर पास किया कहेंगे हमारी क्लास आगे बढ़ेगी क्या? उस परिस्थिति में जब मुझे पहले गुस्सा आता था, आज गुस्सा नहीं आता है, तब हम कहेंगे कि उस परिस्थिति को मैंने पास कर लिया है ना। बाबा कहता है पास करना है, पास रहना है और पास होना है ना। बाबा के पास रहेंगे तो पास हो ही जाने वाले हैं, और सिर्फ पास नहीं होना है, पास विद ऑनर होना है, यानी उसका जरा भी प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े तो कहेंगे हम पास विद ऑनर हुए। अगर जरा भी मेरी स्थिति हलचल में आती है तो उसको हम पास विद ऑनर नहीं कहेंगे, पास कह सकते हैं फिर भी, कि अगर हमने परिस्थिति को पास कर लिया तो पास हो गए, लेकिन पास विद ऑनर कब कहेंगे? संकल्प में भी उसकी हलचल या प्रभाव ना हो, स्थिति अचल रहे। आश्चर्यजनक बातें भी क्वेश्चन पेपर के रूप में आ जाए। आश्चर्यजनक बातें माना जो बात मन और चित्त में नहीं अचानक मेरे सामने आ गई और फिर भी मेरे मन में हलचल नहीं हुई। हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है ना, लेकिन अटेंशन और अभ्यास चाहिए, बिना अभ्यास के नहीं हो सकता। तो आपसे पूछते हैं कि कौन ऐसे समझते हैं हमने क्रोध रूपी माया को जीत लिया है। हाथ उठाएंगे? नहीं उठाएंगे। नहीं जीता है अभी तक ऐसे। आ ही जाता है, मन में आ जाता है। हाँ, बोल के तो नहीं करते हैं ब्राह्मण, लेकिन मन ही मन गुस्सा जरूर करते हैं। तो कैसे जीतेंगे उसको? योग बल से। हिसाब किताब है। बाबा ने कहा कोई भी निमित्त बनता है हमें गुस्सा दिलाने के, मानो किसी ने मेरा अपमान ही कर दिया, हाँ, या किसी ने मुझे ऐसा शब्द कह दिया जो मुझे पसंद नहीं है। कई बार किसी ने मुझे गलत देख लिया, माना ऐसे ही थोड़ा गुस्से से ही देख लिया, गुस्सा किया नहीं लेकिन देख लिया, उसमें भी हमें परेशानी हो जाती है, हमारा मन हलचल में आ जाता है, होता ही नहीं होता। तो जो ज्ञान है उसको उस समय यूज करना है कि उसने अगर मेरा आज अपमान किया है तो जरूर मैंने कभी उसका अपमान किया होगा। कोई हिसाब किताब था, खत्म हो गया, वो कर्ज चुकता हो गया, और अभी आगे के लिए ना बने तो भी मुझे उसके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखनी है। शुभ भावना शुभकामना रखेंगे तो आगे के लिए सदा के लिए वो हिसाब खत्म। और अगर मैंने उस बात को ले लिया नेगेटिव, तो मैंने एक का 100 गुना बढ़ा दिया। बाबा कहते हैं ना, एक का पदम गुना प्राप्ति भी होती है, तो एक का 100 गुना बन भी जाता है। तो कई बार ब्राह्मण जीवन में पुराने जन्मों के विकर्म विनाश तो हम अपने ज्ञान योग बल सेवा से कर लेते हैं, लेकिन ब्राह्मण जीवन में जो जाने अनजाने हमसे होते रहते हैं, हमें कई बार ये इतना स्मृति भी नहीं रहती, मैंने कहा ना विस्मृति में चले जाते हैं, तो फिर वो विकर्म का हिसाब किताब का खाता उससे भी बड़ा हो जाता है। जो पिछले जन्मों का हिसाब किताब होता है उससे भी ज्यादा कई बार ब्राह्मण जन्म में हम वो बोझ अपने सिर पर ले लेते हैं। तो ये हमें बहुत अच्छी तरह से अंडरलाइन करना है। और बाबा कहता है अगर आपने सहन कर लिया, मानो हम चुप रह गए, कोई बात हुई गुस्से वाली, हम चुप रह गए उस समय, मैंने सहन कर लिया, हमने हार मान ली, मानो बड़ी दादी कहती थी हारमनी कहते ना, हारमनी मतलब आपस में संबंधों में प्यार रहे, सहयोग रहे, तो उसके लिए हारमनी इंग्लिश शब्द है, लेकिन इसका मतलब है मैंने हार मान ली। तो अगर मैंने हार मान ली तो हम छोटे नहीं हो गए, और अगर मैंने सहन कर लिया तो बाबा की आज्ञा के प्रमाण मैंने सहन किया ना, ये शिव बाबा की आज्ञा है ना कि आप सहन करो। तो अगर मैंने बाबा की आज्ञा के प्रमाण सहन किया तो मुझे बाबा की दुआएं हैं, और वो बाबा की दुआएं मेरा जन्म जन्मांतर का पदम गुना कमाई जमा करने वाली हैं। मैंने उस पेपर को पास कर लिया तो मेरी तो कमाई जमा हो गई, ऐसे ही होगा ना। हाँ, और ये भी बाबा ने कहा कि जो सहन करने वाले हैं वही सहनशाह बनते हैं। तो अगर उस समय हम इस ज्ञान को जो बाबा ने हमें दिया है उसे यूज करेंगे तो उस परिस्थिति को पार करना मुश्किल होगा या कठिन होगा? हाँ, बाबा कहते हैं ऐसे समय पर जो हिम्मत और उल्लास वाली बातें बाबा ने हमें समझाई हैं, हाँ, जो पॉजिटिव बातें समझाई हैं उसे यूज करना है। यूज नहीं किया, उसका प्रयोग नहीं किया तो मेरे पास बहुत धन पड़ा है बैंक में, हाँ, लेकिन यूज नहीं हो रहा है तो क्या फायदा बैंक में पड़ा है, खुश है बस बैंक में इतना लाख रुपया पड़ा है, ऐसे ही कहेंगे ना। तो बाबा ने कितने लाखों के रत्न दिए हैं हमें, और जब समय पर काम नहीं आ रहे तो क्या फायदा है ना, सुनकर खुश होना माना सिर्फ मैंने बैंक में उसको जमा कर दिया है, हम उसको यूज नहीं करे। तो सही समय पर बाबा की सही ज्ञान की बात मुझे याद आए ना, कहने का मतलब वो शस्त्र हमारा काम करे तो हम उस पर विजयी बन जाएंगे, और नहीं याद आएगा तो उस कहानी जैसी हालत होगी कि फिर माया हमें इधर से उधर फटकाती रहेगी। और तीसरा है लोभ आ जाता है कई बार, ब्राह्मणों को दुनिया वालों जैसा लोभ नहीं आता है, ये तो समझ है, अविनाशी कमाई क्या है और विनाशी कमाई क्या है। पर मानो ज्ञान में आए, बहुत अच्छा बिजनेस चलता था पहले और ज्ञान में आते ही बिजनेस में घाटा हो गया, हाँ, या नुकसान हो गया, जो भी कहो। कई बार ऐसे हो जाता है। मुझे याद है हमारे पिताजी जब ज्ञान में आए थे तब हम बहुत छोटे थे, और उस समय ज्ञान में आने के कुछ साल के बाद ही, 3-4 साल के बाद ही हमारे घर में चोरी हो गई और सब चोर ले गए मतलब स्कूल तक के कपड़े भी चोर ले गए और स्कूल जाना पड़ा घर के कपड़े पहनकर। अब बताइए, ज्ञान में आने से पहले तो सब ठीक चल रहा था और ज्ञान में आने के बाद ही तो कह सकते ना कि बाबा ने रक्षा नहीं की। बाबा क्या कर रहा था उस समय? और चोरों ने अच्छी तरह से क्लोरोफॉर्म सुंघा के सबको बेहोश किया था, किसी को पता नहीं कब चोर घुसे, कब उन्होंने सारा सामान लिया और चले गए। लेकिन हमारे पिताजी, मतलब उस समय सिर्फ उनको 3-4 साल ही हुए थे ज्ञान में, तो जरूर उनका हलचल हुई है मन में इस बात को लेकर के, बहुत हलचल हुई। परिस्थिति तो पैदा हो जाती है ना, तो फिर वो तो होता ही है। लेकिन फिर बाबा को याद किया तो 3-4 दिन के बाद, पुलिस में रिपोर्ट वगैरह तो करते ही हैं, तो 3-4 दिन के बाद घर के पीछे ही खेत हुआ करते थे, तो वहां खेतों में कहीं वो जो सामान था, बहुत बहुत ज्यादा धन तो घर में नहीं रखा था और कुछ गहने वगैरह भी नहीं रखे थे, तो वो वाली बात नहीं थी। जो सामान ले गए थे वो रोजमर्रा का सामान जो होता है घर में यूज करने का, वही ले गए थे और वो उनके काम का नहीं था। वो क्या करेंगे उस सामान का, तो कहीं खेत में वो ट्रंक में भर के जो सामान ले गए थे वो सारा सामान वहां मिल गया 3-4 दिन के बाद। तो देखिए, हाँ, बाबा फिर हमें मदद तो करता ही है। तो मैं एक बात सुना रही हूँ, ऐसे ही होता है कभी बिजनेस में नुकसान होता है तो फिर हमें लगता है आज दिन तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ, और ज्ञान में आए तो लोगों को भी मौका मिल जाता है। आपके जो रिश्तेदार होंगे जिन्हें ये पसंद नहीं था, आप ब्रह्मा कुमारी इसमें जाओ, उनके देखो आप गए ना उधर, आपने अपनी देवी देवताओं की पूजा करना छोड़ दिया ना, वो नाराज हो गए। अभी इसीलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है, सुना होगा आप में से कभी कभी किसी किसी ने, बहुत बोलते हैं ना ऐसा, तो क्या करेंगे फिर, हिल जाएंगे। हाँ, ये तो सब पास होने वाले बैठे हैं, आप जो बैठे हैं ये सब पास करके आए हैं, ऐसे ही कहेंगे ना। तो भी उस स्थिति में भी बाबा कहता है एक गया लाख पाया। मैंने एक मुरली में पढ़ा था, एक सेंटर पर कानपुर में अपना एक सेंटर था, मुरली में ही बाबा ने उनसे बात की, उस पर आग लग गई, काफी नुकसान हो गया और बहने उस बाबा से मिलने आई, तो उस समय बाबा पर्सनल मिलते थे, तो बाबा बहनों से मिला और बाबा ने कहा क्या सोचती हो, एक गया और लाख पाया। हाँ, मानो कोई हिसाब किताब था वो गया, लेकिन उससे अब पदम गुना ज्यादा प्राप्ति होने वाली है क्योंकि वो हिसाब किताब खत्म हो गया, पूरा हो गया। तो ये सोचने की बात है कि जैसे हम कहते हैं ना, किस परिस्थिति को हम कैसे सोचते हैं, जो नुकसान हुआ उसमें भी कल्याण है। बाबा ने हमें ये सिखाया है, संगम युग कल्याणकारी युग है, मानते हैं ऐसा, हर बात में कल्याण है। बुरा हो गया तो भी कल्याण है, है बुरा हो गया तो भी कल्याण है ना। ऐसे अनेक अनुभव हमारे अपने जीवन के हैं कि बुरा दिखाई देता है, देखने में बहुत बुरा लग रहा है, मेरी जिंदगी में ये तो ऐसा हो गया, होना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें हमारा भला है जरूर। आज हमें नहीं दिखाई दे रहा, वो भविष्य के पर्दे में होगा, शायद बाद में हमें समझ में आएगा, क्योंकि कल्याणकारी बाप है, कल्याणकारी समय अकल्याण हो ही नहीं सकता। अगर ये निश्चय है तो हम फुल स्टॉप लगा पाएंगे, और अगर ये निश्चय नहीं है तो व्यर्थ संकल्पों में चले जाएंगे, क्यों, क्या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हाँ ये क्या हो गया, कैसे हो गया, अब क्या करेंगे, क्या कहेंगे, क्यों क्या में जाना है, नहीं। तो विघ्नों को पार करने का तरीका है, बाबा कहता है एक तो कल्याण का बिंदु लगा दो, जो हुआ उसमें ही कल्याण है, इसमें ही मेरा कल्याण था, और दूसरा नथिंग न्यू भी फुल स्टॉप लगाने में हमें मदद करता है। जो बात हुई वो मैंने केवल एक बार अभी पार की, ऐसा नहीं, हर 5,000 साल पहले भी मैंने इस पेपर को पास किया है, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, याद आएगा उस समय।
अगर याद आएगा तो जरूर विजयी हो जाएंगे और नहीं याद आएगा तो कहानी जैसा हो जाएगा, ऐसे ही कहेंगे। तो याद आना चाहिए समय पर कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, नथिंग न्यू। किस काम को मैंने 4 बार किया है, 6 बार किया है, तो उसे फिर से पार करने में मुझे मुश्किल होती है। जो काम मैं पहली बार कर रही हूँ उसमें जरूर मुश्किल होती है, लेकिन इतनी बार मैंने कर लिया तो जैसे ही स्मृति आई, ये मैंने एक बार नहीं, अनेकों बार, अनगिनत बार मैंने इसको पास किया है, तो आज पास करना मेरे लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। और हमारे पास जो मोह और अहंकार आते हैं वो भी दुनिया वालों जैसे रूप में नहीं आते हैं। बाबा कहता है कि मोह होता है तो फिर थोड़ा बहुत मेरापन जो होता है उसमें ही होता है। लौकिक संबंधों के मोह में हम शायद इतना नहीं जाते, थोड़ा बहुत चलो अंश वंश रूप में होता होगा लेकिन उतना नहीं। लेकिन जो मेरी प्राप्तियां हैं या मेरी विशेषताएं हैं या मेरी बुद्धि है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अभिमान और मोह, उसमें कई बार हम चले जाते हैं और अगर उसको महत्व नहीं दिया गया तो फिर हलचल में आ जाते हैं। मेरी विशेषता है उससे काम नहीं लिया जाता, मेरी इतनी प्लानिंग बुद्धि है। बाबा कहता है वो सूक्ष्म रूप में जो अहंकार आता है वो दुनिया वाला नहीं, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, प्रोफेसर हूँ, फलाना हूँ, वो सब हम छोड़ देते हैं कि सूक्ष्म रूप आते हैं, थोड़ा रॉब रखते हैं, अपने को ही राइट समझते हैं, मैं जो कह रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ वो ही सही है, मेरे विचार सही हैं, अपनी बात को ही हम सही मानते हैं, फिर उसको सिद्ध करते हैं। कई बार गलती हो जाती है तो भी उसको नहीं मानते हैं। बाबा हमेशा क्या कहता है कि चलो गलती हो गई, बाबा के सामने हमने रखा, बाबा से हमने माफी ले ली, आधा हमारा वहीं खत्म हो जाता है। आपस में भी अगर हम संबंधों में आते हैं, संबंधों में तकरार होता है, मानो किसी भी बात को लेकर के मेरे संस्कार नहीं मिलते हैं, आपस में विघ्न रूप बनने लगते हैं, वही ज्यादा टकराव कहाँ होता है, जहाँ अहंकार, जहाँ अहम आता है, ऐसे ही कहेंगे ना। स्वभाव संस्कार में जो टकराव होता है, हम झुकना नहीं चाहते, अपनी गलती हम मानते नहीं है, तो संबंधों में ये स्थिति पैदा होती है, मानो अगर मैं झुक गई, जैसे बड़ी दीदी की माँ थी ना, क्वीन मदर, वो कहती थी झुक झुक मर मर सिख सिख, ये उनका स्लोगन था। जितना हम झुकेंगे, ऐसे नहीं मैं ही मरती रहूंगी क्या, सारी जिंदगी मैं ही सहन करती रहूंगी क्या, कितना सहन करूंगी आखिर, बहुत सहन कर लिया मैंने, ऐसे कहेंगे हम बाबा के बच्चे, ऐसे कहेंगे। दुनिया में तो ऐसे कहते हैं कि कभी भी किसी का अन्याय सहन मत करो, अगर न्याय के विरुद्ध आवाज उठाना चाहिए, या हम सहन करेंगे तो लोग क्या करेंगे, हमारा नाजायज फायदा उठाएंगे, ऐसे भी कहते हैं ना। तो हम क्या कहेंगे, हमारा ज्ञान हमें क्या कहता है, क्या कहता है, सहन करेंगे तो सहनशाह बनेंगे, ऐसे सहन की कोई सीमा नहीं। बाबा कहता है 10 बार मैंने सहन किया और 11वीं बार बोल दिया तो भी फेल है ना। उसने गुस्सा किया, नहीं उसने झूठ बोला, मैंने गुस्सा किया, तो बाबा ने कहा उसने झूठ बोला, आपने गुस्सा किया, दोनों ही फेल। झूठ बोला वो तो गलत है, या आपने गुस्सा किया वो सही है क्या, है ना, तो गलत गलत को ठीक तो नहीं कर सकते। तो यहाँ भी जितना हम किसी भी बात को सहन करते हैं या धैर्य रखते हैं, आपसे संबंधों में भी जो हम बात कर रहे थे, जितना हम नम्रता से चलते हैं, जितना हम झुककर चलते हैं, जितना हम स्नेह रखते हैं, यानी मास्टर प्रेम का सागर हूँ मैं, मास्टर शांति का सागर हूँ, बाबा के गुण मेरे गुण है ना, ऐसे ही कहेंगे। जो ईश्वरीय गुण है, जो ईश्वरीय संस्कार है, वो मेरे संस्कार है, अभी मैं ब्राह्मण हूं, तो क्या भगवान कभी हम पर करता है ऐसे। हम कितनी भी गलती करके बाबा के सामने जाते हैं फिर भी हम बाबा के बच्चे हैं, माँ बाप क्या करते हैं, अपने बच्चों की 100 गलतियां माफ करते हैं, करते हैं कि नहीं करते, या निकाल देते हैं घर से बाहर। बहुत ही ज्यादा कोई ऐसा काम कर दिया जो क्राइम कर दिया हो, तब तो जरूर कहेंगे कि ना होता तो अच्छा था, ऐसे ही कहते हैं ना। लेकिन ज्यादा तो क्या करते हैं, ठीक है बच्चे हैं, सुधर जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, ऐसे ही करते हैं ना। तो हम भी उसी तरह की अपनी स्थिति रखें कि मैं कौन हूँ, मैं बाबा की राइट हैंड हूँ, मास्टर विश्व कल्याणकारी हूँ, विश्व सेवाधारी हूँ, तो मेरा फर्ज क्या है? आत्माओं पर रहम करना, सहयोग देना, प्रेम देना, ना कि उनकी छोटी छोटी कमियों को लेकर के नाराज हो जाना, परेशान हो जाना या गुस्सा हो जाना। इसे कहते हैं ना, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पादिक, कबीरदास जी का दोहा है। हाँ, जो बड़े होते हैं ना उनके लिए कहते ही हैं, अच्छा ठीक है ना, आप तो बड़े हो ना, माफ कर दो। कहते कि नहीं कहते? और आपने माफ किया, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती, नहीं हो जाती? तो वो मेरी स्थिति होनी चाहिए, वो विघ्न विनाशक स्थिति है जिसे हम सचमुच में कहेंगे कि हाँ, हम विघ्नों का विनाश करने वाले हैं। नहीं तो आए दिन छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें बड़ी नहीं होती हैं, बाबा कहते हैं हम उससे बड़ा बनाते हैं। किसी भी बात को आप सोचते हैं, माना आप आग में घी डालते हैं, ऐसे ही होता है ना। बात इतनी सी होती है, लेकिन उसने मुझे एक शब्द कहा होगा, मैंने उसको चार दिन दस दिन तक सोचती रही उसने मुझे ऐसा कहा कैसे, हाँ उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे कहने की, मानो अब क्या किया मैंने, हाँ उसको पहाड़ बना दिया, सोच सोच के राई को मैंने पहाड़ बना दिया, और पहाड़ को मुझे राई बनाना है तो सारे विस्तार को सार में समा दो। सार क्या है? मेरा स्वरूप मेरी स्मृति में आ जाए, मैं आत्मा हूँ, और मुझ आत्मा का सत्य स्वरूप क्या है, हाँ बिंदु में समाना, माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ। स्मृति आते ही सब समर्थ आ जाती है, आती नहीं आती, समर्थ हो जाते हैं तो परिस्थिति को पार करना। बाबा कहता है उड़ती कला में चले जाओ, एरोप्लेन उड़ता है ना आकाश में, तो नीचे कितने भी पहाड़ हैं, कितनी भी नदियां हैं, कितनी भी बाधाएं हैं, क्या फर्क पड़ता है उसको? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो उड़ रहा है ऊपर, बाधाओं से ऊपर उड़ रहा है। तो हमें भी बाबा ने उड़ती कला का अभ्यास सिखाया है, किस लिए? इस संसार से उड़ जाओ, संसार से परे हो जाओ, कहां बैठ जाओ जाके, हाँ बाबा की गोदी में बैठ गए, बाबा के पास चले गए, तो सारी बातें कहाँ रह जाएंगी? नीचे रह जाएंगी, है ना। और फिर वो तो है ही, एक मुरली में बाबा ने कहा था कि कोई विघ्न आता है और हम समझते हैं वो सूली से कांटा हो गया, हाँ बाबा की याद से मेरा वो विघ्न सूली से कांटा हो गया। तो बाबा ने कहा कि सूली से कांटा होना भी फाइनल स्टेज नहीं है, हाँ लेकिन वो कांटा बने और योग अग्नि से कांटे को भी भस्म कर दो, कांटे का भी असर मेरे ऊपर, कांटा भी चुपता तो है ना, तो कांटे का भी असर मेरे ऊपर ना आए, ये फाइनल स्टेज है, इस स्टेज तक हमको पहुंचना है। और अंतिम समय के लिए बाबा कहता है कि अंतिम समय वो समय होगा जब चारों तरफ से विघ्नों का वार एक साथ होगा। पास विद ऑनर की जो स्टेज है ना, बाबा कहता है आठ ही है जो पूरा पूरा पास विद ऑनर होते हैं, 108 भी थोड़ा 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 ऊपर नीचे होते हैं। तो वो स्थिति, वो पेपर बाबा ने हमें पहले से बताया कि चारों ओर की परिस्थितियां हलचल में लाने वाली होंगी, क्योंकि माया भी अपने विकराल रूप में आएगी सामने, प्रकृति के पांचों तत्व भी किसी ना किसी रूप में वार करेंगे, हमारे पुराने संस्कार भी इमर्ज हो सकते हैं जो थोड़े बहुत कहीं ना कहीं दबे हुए हैं, फिर साथ साथ तमोगुणी आत्माओं के वाइब्रेशंस, बहुत सारी आत्माएं एक साथ शरीर छोड़ेंगी, तो इविल सोल्स का भी वार हो सकता है अगर कहीं भी हम थोड़ा कमजोर होंगे। लेकिन ऐसे समय पर भी मेरी कंट्रोलिंग पावर इतनी हो, जिसको बाबा कहते हैं समेटने की शक्ति इतनी पावरफुल हो कि तुरंत सब बातों को समेट कर कहीं भी बुद्धि ना जाए, एक बाप दूसरा ना कोई, अगर वहां मन एकाग्र है तो फिर हम पास हो जाएंगे। लेकिन सबसे मुश्किल है जब वातावरण अशांत होता है ना, तो उस अशांति का असर हमारे ऊपर आता ही नहीं आता, दूसरे की अशांति का असर मेरे पर आता ही नहीं आता है, आता है कि नहीं आता? आता है ना, तो इसका मतलब हम कच्चे हैं अभी, माने अपने को हम टेस्ट करते रहें। ऐसा नहीं हमें दूसरे को सहयोग नहीं देना है, कोई परेशान है, दुखी है और शांत है तो मुझे सहयोग नहीं देना है। लेकिन डॉक्टर इलाज करता है, कैसे इलाज करता है? सीसी करते हुए इलाज करेगा क्या? उसको पता है मुझे दुख दूर करना है, लेकिन उस दुख से वो खुद दुखी नहीं हो जाता है। बाबा हम आत्माओं को पावन बनाते हैं, ऐसे नहीं कि वो हमारे ही समान पतित हो जाते हैं। तो बाबा ने हमें ये सिखाया, दूसरों के प्रभाव में नहीं आना, लेकिन अपनी स्थिति में रह करके उनको सहयोग देना है। तो भले हम अशांति को दूर करने का प्रयास करें, लेकिन उनकी अशांति से मैं अशांत हो जाऊं नहीं। वो अभ्यास बहुत काल का अभ्यास चाहिए ना। बाबा कहता है अंत समय में मैं कर लूंगी, अंत समय में मैं आत्मा की स्थिति में स्थित होकर डबल लाइट हो जाऊंगी, फरिश्ता हो जाऊंगी। अंत में हो जाएंगे? नहीं हो सकते हैं, लंबे समय का अभ्यास। और इसीलिए पुरुषार्थ के लिए हमें समय चाहिए, बाबा ने हमें वो समय दिया है। ज्ञान समझ में आने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन उस अभ्यास में, उस स्वरूप में आने में हमें समय लगता है। और बाबा साथ हैं तो बाबा कई बार हमें कहते हैं, अगर विघ्न आते हैं, मानो बहुत हमें लगता है मेरे जीवन में बहुत विघ्न आते हैं, तो क्या करें हम? क्या करें हम? योग का प्रयोग करें। सूरज भाई इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्लासेस कराते हैं कि कैसे हमें विभिन्न स्थितियों में योग का प्रयोग करना है। कई बार तन की बीमारी आ जाती है, अब तन हमारी प्रकृति है और वो प्रकृति भी हमारा पेपर लेती है, ऐसा ही कहेंगे। कई जन्मों के हिसाब किताब हमें इस तन की बीमारी से दूर करने पड़ते हैं। तो सूले से कांटे की स्थिति तो हम महसूस कर लेते हैं कि ये मेरी तन की बीमारी ऐसी थी, बाबा की मदद से मैंने कर्म भोग को कर्म योग में बदला, ऐसे ही कहेंगे। लेकिन बाबा कहता है आत्मा स्वस्थ रहनी चाहिए, ऐसे नहीं कि वो शरीर का रोग मेरी आत्मा में भी दर्द का अनुभव कराए। एक बार मुरली में कहा था बाबा ने, भले शरीर छूटता है, मानो ऐसी कोई बीमारी है, शरीर छूटता है, शरीर छूट जाए लेकिन खुशी ना जाए। याद होगा आप लोगों को, खुशी ना जाए। हो सकता है ऐसे कि शरीर का दुख, हम ये जानते हैं शरीर विनाशी है और शरीर तो हम सबको ही छोड़ना है, लेकिन किस स्थिति में मैंने शरीर छोड़ा वही अंत मते सो गति होने वाली है। तो बाबा कहते हैं अगर खुशी खुशी शरीर छोड़ा तो आगे भी एडवांस पार्टी में सेवा के लिए जाएंगे, ऊंच पद की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर बंधन में आ गए, कर्म बंधन आ गए ना, मतलब कर्म योग की बजाय कर्म बंधन में आ गए, शरीर के बंधन में आ गए, तो फिर वापस एडवांस पार्टी में जन्म नहीं होगा, इसी पुरानी दुनिया में जन्म लेना पड़ेगा। तो ये भी अभ्यास करना है, क्योंकि तन का हिसाब किताब भी सबके सामने आता है। आज का तो समय ही ऐसा है कि कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कहेगा मुझे कोई तन की परेशानी नहीं है। छोटी या बड़ी कोई ना कोई तन की बीमारी हमें लगी रहती है, लेकिन वो तन की बीमारी मेरे मन की स्थिति को हलचल में ना लाए। यानी तन से न्यारा होने का इतना अच्छा अभ्यास हमें होना चाहिए। और बाबा का साथ, विघ्न ही हमें हमारी लगन बढ़ाते हैं, ऐसे ही कहेंगे। जैसे कहते हैं दुख में सिमरन सब करें, सुख में करें न कोई, भक्ति में लोग कहते थे, लेकिन आज भी ज्ञान में भी ऐसा होता है कि ज्यादा लगन बाबा के प्रति हमारी कब लगती है? कब लगती है? जब विघ्न आते हैं, है ना। तो हाँ, परिस्थिति हमको ज्यादा पावरफुल बनाती है। तो हमें ये याद रखना है, मतलब ये बलिहारी है विघ्नों की, जो हमें भगवान के ज्यादा समीप ले जाते हैं और अनुभवों रूपी रत्न मिलते हैं। बाबा कहते हैं अगर उसकी गहराई में जाएंगे, जैसे सागर होता है ऊपर में बहुत हलचल होती है, लेकिन रत्न कहाँ मिलते हैं? नीचे गहराई में मिलते हैं। तो विघ्नों को ऊपर ऊपर से देखेंगे तो हलचल में आ जाएंगे, लेकिन अगर उसकी गहराई में जाएंगे, उस समय गहराई में जाएंगे तो अनुभव रूपी रतन हमें प्राप्त होते हैं। वो विघ्न हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, वो शायद हमें कोई नहीं सिखा सकता। जो हमें विघ्नों से सीख मिलती है और जो हमारी स्थिति आगे बढ़ती है, या हमारी बहुत जल्दी चढ़ती कला होती है, ऐसे कहेंगे। तो इस रीति से अगर हम सदा ही स्मृति में रहेंगे, स्मृति से ही विघ्नों को पार करने की सामर्थ्य हमें बाबा देता है। ओम शांति।
ओम शांति। हमारे रूहानी चिकित्सक ने मीठी मीठी गोलियों की डोज बड़ी सुंदरता से दे दी है और आप भूलेंगे नहीं भुलक्कड़ को। वो भुलक्कड़ कोई और नहीं, वो मैं आत्मा हूँ, जो हमारे प्यारे बाबा ने मुझे विघ्न निर्विघ्न विघ्न विनाशक श्री गणेश बनाने के लिए सुंदर सुंदर स्मृतियां दी हैं। लेकिन मैं स्मृतियों को भूल जाता हूँ, तो दीदी ने कहा सिमर सिमर सुख पाओ, कल है कलेश मिटे तन के और मन के। तभी हम बहुत लंबे समय तक अपनी विघ्न विनाशक स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। आपने देखा है विघ्न विनाशक गणेश को कहते हैं। स्मृति स्वरूप से ही हम आज्ञाकारी बन सकते हैं और गणेश को दो सिर दिखाए जाते हैं, एक कट गया और दूसरा चिपक गया। तो आज हम इस भट्टी से अपना विघ्न विनाशक श्री गणेश का स्वरूप अपनी बुद्धि में रखेंगे और विस्मृति का सर कट गया और स्मृति लब्धा का सर लग गया, तभी हम आज्ञाकारी निर्विघ्न और 108 की माला में आने वाले अंत समय में चारों प्रकार के विघ्नों में पांचवी डोनर होने वाले बन सकेंगे। ऐसी मीठी मीठी गोलियां हमारे रूहानी चिकित्सक ने हम सबको दी हैं। सबने संभाल के रख ली, मल्टीप्लाई करनी है, पद्मा पद्मपति बनना है। इसी धारणा से हम दीदी का शुक्रिया करते हैं कि दीदी आप हमारा जो आज प्रेस्क्रिप्शन लिखा है उसको आप जब हम कभी मिलेंगे आपको चेक कराएंगे, अपने प्रसन्नता संतुष्टता निर्विघ्नता स्थिति जीवन से चेक कराएंगे ना। प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर को चेक कराना है, परहेज भी साथ में उन्होंने हमें दिया, देह से दूर रहना है और जो बाबा की श्रीमत है उसे कभी नहीं भूलना है। हमें जीवन में निर्विघ्न रहने के लिए क्षमा भाव को जीवन में लाना है, ये परहेज भी उन्होंने हमें दिए हैं। शुक्रिया।
साथ है डरने की क्या बात है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, करने की क्या बात है, सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, करने की क्या बात है।